الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد पिछले चंद दिनों से मशायख के यहाँ जो मोतबर इस्लाह का नुस्खा है जो तमाम सिलासिल के मशायख जिसको अप्रूव भी करते हैं और जिसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं उस नुस्खे पे गुफ्तगू हो रही है। अब तो चंद हफ्ते हो गए हैं और वो नुस्खा चार चीजों पे मुश्तमिल है। किल्लते ताम, किल्लते कलाम, किल्लते मनाम और किल्लते इख्तिलात माल अनाम। और इन चारों मौजूआत पे गुफ्तगू हम कर चुके। किल्लते इख्तिलात माल अनाम पे पिछले 3-4 दिन से गुफ्तगू हो रही है। किल्लते इख्तिलात माल अनाम का मतलब लोगों से मेल जोल में कमी। तो पिछले मजालिस में हमने इस सवाल का जवाब भी दिया कि आम लोग तो यही समझेंगे कि जी ये किस तरह की पाबंदी है, यदि हम लोगों से ही नहीं मिल सकते तो क्या हमने अकेला रहना है और जंगलों में रहना है और लोगों से दूर रहना है, क्या शादी नहीं करनी, क्या बच्चे नहीं होने, क्या ये इख्तिलात माल अनाम है। तो मशायख ने इसका जवाब दिया कि इख्तिलात माल अनाम ये कोई दायम ही नहीं होता, ये कोई मकसद नहीं होता, ये एक मकसद को हासिल करने के लिए एक चीज है। और ये इख्तिलात माल अनाम दो तरह से होता है, या तो चंद दिनों के लिए इंसान हर चीज से हट कट के शेख की खानकाह या एतकाफ में या इस तरह की चीज में कुछ वक्त लगाता है, या अगर ये भी मुमकिन नहीं है काम कारोबार है तो हर रोज थोड़ी देर के लिए ये इख्तिलात कर ले। और ये इख्तिलात ऐन सुन्नत के मुताबिक भी है और ये इख्तलात अकल में भी आता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए बंदा हर चीज से हट कट के यूनिवर्सिटी नहीं जाता क्या? कुरान पाक पढ़ने के लिए हर चीज से हट कट के बंदा कुरान पाक पढ़ने के लिए उस्ताद के भाई, अगर एक बंदा कहे कि नहीं जी मैंने तो लोगों से भी मिलना है और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी पढ़नी है तो क्या ये मुमकिन है? तो ये तो अब एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया है ये बहुत सारी चीजों को हासिल करने के लिए हर चीज से हटकट के काम करना पड़ेगा। आज जो ऑफिसेज में नौकरी करने वाले लोग हैं वो ये कहें कि जी जो मैंने 8-9 घंटे दिए हैं आपको उस दौरान मैं तो हर चीज से हटकट के आपकी ऑफिस में नहीं आ सकता, मैंने तो अपने बाकी सारे काम भी और करने हैं, मैंने अपने वालदेन को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है। तो ऑफिस वाले कहेंगे फिर आप वही करें, इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। तो हर काम जिसको तवज्जो से किया जाता है उसके लिए इख्तिलात करना ही पड़ता है। तो कोई अकली तौर पे भी कोई ये बईदुल कयास चीज नहीं है इख्तिलात माल अना। तो इख्तिलात माल अनाम पे हमने ये गुफ्तगू भी की। इख्तिलात माल अनाम कब तक करना है ये भी सवाल है। तो मशाइख ने जवाब दिया कि इसको करने का मकसद ये है कि दिल को फनाइयत हासिल हो जाए, यानी अल्लाह की याद इतनी रासिख हो जाए कि ये अल्लाह की याद इंसान की दिल की सिफत बन जाए। बल्कि जब ऐसा हो जाता है तो मशाइख फरमाते हैं कि जी अब लोगों से मेल जोल बढ़ाओ कि ऐसा बंदा जिसके दिल में अल्लाह की याद रासिख हो गई वो लोगों पे एक अच्छा असर छोड़ेगा, लोगों को भी अल्लाह से जोड़ेगा। तो इसलिए इख्तिलात माल अनाम कोई दायमी चीज नहीं है कि पूरी जिंदगी हर चीज से हटकट के बैठना है, फिर सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। और इख्तिलात माल अनाम जो है उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत सारा वक्त निकाल के, और जरूरी नहीं है कि शहर छोड़ के ही कहीं जाए या कारोबार छोड़ के ही जाए, दिन में भी इख्तिलात हो सकता है, हर रोज इख्तिलात थोड़ी देर के लिए कर। इसी तरह एक मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि अमेरिका की बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट उसका कहना यह है कि जो शख्स हर रोज थोड़ी देर के लिए इख्तिलात माल अनाम करता है, इन लोगों से हट कट के बैठता है मगर अपने दिमाग को भी इख्तिलात में ले आता है, दुनियावी सोच दुनियावी जो धंधे हैं उनको दिमाग से पूरी तरह से निकालता है, उसकी दुनियावी परफॉर्मेंस भी बेहतर बन जाती है और वो अक्यूट डिप्रेशन में से भी निकल आता है। ये जो डिप्रेशन है उसकी वजह आज के साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक कोई परेशानी है, इस पे इंसान एक मरतबा सोचता है तो दिमाग के ऊपर एक बोझ आता है, दूसरी मरतबा सोचता है तो और बोझ आता है, बार बार सोचता है और हर मिनट सोचता है तो बोझ आ आके दिमाग ऐसा डिप्रेस होता है कि उसके हवास पे असर होने लगता है। तो ये जो इख्तिलात माल अनाम, हर चीज से हट कट के हर चीज को ब्लॉक कर देना, ये इस साइकिल को तोड़ता है डिप्रेशन की।
बिल्कुल
कल की मजलिस में ये सारी बातें अभी रिकैप ही हो रही हैं, पिछले चंद दिनों में जो मजालिस हुई थी, कल की मजलिस में जो हमने बात की वो ये कि मशायख ने फरमाया कि इख्तिलात माल अनाम जो है इसमें कुछ लोग वाकईतन ऐसे हैं कि जिनसे किनारा कशी करनी जरूरी है, सालिक सालिक को भी और आम मुसलमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा कोई है जो तुम्हारे दोस्त है, यानी जो तुम्हारे दोस्तों का दीन होगा, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो तुम वैसे ही बनोगे। तो इसलिए मशायख ने फरमाया कि जो लोग गुनाह में घिरे हुए हैं सालिक उनके साथ ज्यादा ताल्लुक ना रखे, इख्तलात ही रखे। तो ये जो बंदा समझता है ना कि नहीं जी मैं अगर गुनाह वालों में बैठूंगा तो मेरे ऊपर असर नहीं होगा, ये बात सही है उसके लिए जो कोई साहिब निस्बत अल्लाह वाला हो कि वो शायद गुनाह वालों में बैठेगा तो शायद उसके ऊपर असर इतना ना हो और वो उन पे असर अंदाज हो जाए, वरना इब्तदान तो सालिक के ऊपर माहौल असर करेगा। इब्तदान क्या, हर बंदे पे माहौल का असर होता है, जहां इत्र खिंचता है जाओ वहां अगर तो आओगे एक रोज कपड़े बसाकर, और जहां आग जलती है जाओ वहां घर तो आओगे एक रोज कपड़े जलाकर। हर एक के ऊपर माहौल का असर है, तो इसलिए जो लोग जिनका मकसद गुनाह ही करना है उनके साथ बैठे रहेंगे गुनाहगार होके ही उठेंगे, और जिनका मकसद दुनिया ही है आखिरत की कोई सोच कोई फिक्र ही नहीं है उनके साथ भी बैठेंगे तो यही हो जाएगा। इसी तरह कल की मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि ऐसा शख्स कि जो आपको दीनी लोगों को बुरा भला कहता है, खास तौर पे जिन शेख के साथ आपका ताल्लुक है उन पर एतराजात करता है, मशायख ने लिखा है कि ऐसे शख्स से भी दूर रहना चाहिए। इंसान के ऊपर अल्फाज का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, सोहबत का असर बहुत ज्यादा। जो लोग एतराजात दीन के काम के करने वाले पे कर रहे होते हैं वो दर हकीकत दीन को गिराने में मदद कर रहे होते हैं, ये गुनाहों में बड़ा गुनाह है। यूं समझ लें कि एक बंदे ने बदनजरी की, गुस्सा किया, चोरी की, उसने गुनाह किया, पर एक बंदे ने लोगों को किसी दीनदार शख्स से बदजन किया, उसने गुनाह की फैक्ट्री लगा दी, तो उसने एक आवाम को दीनी फायदा हासिल करने से महरूम कर दिया। तो इसलिए जो लोग दीनी काम करते हैं لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یا اصلاح کا کام کرتے ہیں، یا تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا دینی سیاست کرتے ہیں کہ ملک کے اندر دینی قانون آ جائے. سیاست میں تو بہت زیادہ اعتراض کرنے کی، سب کو کھلی چھوٹ ایسا لگتا ہے ملی ہوئی ہے. سیاسی لوگوں کی غیبت کرنے پہ ایسا لگتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو آرام سے سیاسی لوگوں کو بغیر دلیل کے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہے اور یہ چور ہے اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کہنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے احتیاط ہر طرح کے شخص کو برا بلا کہنے میں ہونی چاہیے، مگر جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو برا بلا کہنے میں بہت زیادہ احتیاط. ایک بندہ ہے جو بیٹھ کے دوسروں کو نماز کی طرف لا رہا ہے، شریعت کی طرف لا رہا ہے، عبادت کی طرف لا رہا ہے. چنانچہ ایک شیخ دینی محنت کر رہے تھے اور کسی بیان میں ان کی ملاقات ایک 65 سے 70 سال کی عمر کے ایک بزرگ سے ہوئی، اور ان بزرگوں نے کہا کہ جی آج پہلی مرتبہ میں نے دینی بیان سنا، کہ تھوڑے دنوں پہلے ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی نوکری کو سب کچھ سمجھتا تھا، تو اس لیے میں کہتا تھا یہ دینی مجالس اور دینی لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا، اس میں ٹائم ضائع کرنا ہے. انہوں نے صاف صاف بتایا، انہوں نے کہا آج آپ کا بیان سنا. تو انہوں نے ان بزرگوں سے کہا، یا وہ عالم دین سے ان سے کہا کہ جی مجھے ایسا لگا کہ یہ غلطی میری تھی، بہت پہلے ہی مجھے یہ دینی لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے تھا تاکہ میں ابھی تک یہ میرا حال نہ ہوتا، نماز بھی نہیں پڑھتا اور عمر یہاں پہنچ گئی. تو جو شیخ تھے انہوں نے ان کو بڑی ترغیب دی اور محبت بھی دی اور بڑا پیار محبت سے. تو وہ شیخ کی مجلس میں باقاعدہ آنے لگے، نمازیں 5 وقت کی پڑھنے لگے. پانی 65 سال کی 70 سال کی عمر میں کہتے تھے جمعہ بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، تو بڑا ان کو فائدہ ہو گیا. شیخ سے قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ مالدار شخص ہے اور ان کے اوپر حج بھی فرض ہے. جو حضرت تھے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ حج کر لیں، آپ کی عمر اتنی ہو گئی کہ کسی بھی سال آپ مطلب کسی بھی وقت انسان جا سکتے، بڑھاپا ہو گیا، 70 سال کی جو عمر ہو گئی. انہوں نے کہا جی بالکل. اور انہوں نے ان شیخ سے کہا کہ جی آپ ہی کے ساتھ آپ ہر سال شپ لے جاتے ہیں، آپ ہی کے گروپ میں جو بھی ہے ان کے ساتھ ہے. ان بزرگوں کے ساتھ انہوں نے پروگرام بنا لیا، طے بھی ہو گیا، پیمنٹ بھی ہوگی، فلائٹ بھی ہوگی، ٹکٹ سب کچھ ہو گیا. اب یہ بہت عرصے سے ایک بے دینی والی زندگی سے ایک دینی والی زندگی کی طرف آئے. ایک بزرگ جو تھے وہ ان کے ساتھ بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کو نیکی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زندگی میں سے جو شرعی خامیاں تھیں سب نکل گئی، نمازوں کی طرف بھی آ گئے. اتنے سال حج فرض رہا، وہ فرض چھوٹنے والا تھا تو وہ بھی. مگر کیونکہ بہت سارے اتنی زندگی کے بہت سارے ایسے دوست تھے تو اس طرح کی طبیعت رکھتے تھے، تو کسی ایک دوست کو، پرانے والے دوست کو پتا چلا کہ جی اب تو یہ تھوڑے سے مولوی بن گئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں. تو وہ دوست جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے خوب کہ تو کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، زندگی کو بگاڑ رہا ہے، کیا تجھے ملے گا اس سے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، ان کو عقل نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بات ہے. آرام سے تجھے حج پہ لگا دیا ہے، وہ کوئی آسان کام ہوتا ہے جو بوڑھا آدمی ہے تو، اور کہیں لیٹا پڑا ہوا ہوگا بے ہوش تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر ان بزرگوں کو فکر تیری کوئی نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں سنا سنو کے اور ڈرا دیا. نہ یہ دیکھا کہ کتنی محنت سے کوئی کسی کو پکڑ کے اس طرف لے کے آیا. اتنے وہ ڈر گئے کہ انہوں نے ان شیخ کو فون کر کے کہا کہ جی میں نے حج پہ نہیں جانا. اب وہ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ بھائی عمر اپنی دیکھیں، اتنے سالوں سے حج آپ پہ فرض تھا، और अब सारी पेमेंट हो गई है, टिकट आ गई है, अब पीछे होने में आपको नुकसान भी होगा, ट्रैवल एजेंट तो बता नहीं कितना आपको। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, मगर इस साल नहीं हजरत, मैं अगले साल कर लूँ, असल में मेरा दिल नहीं। उसने इस तरह से जहन बना दिया, जितना भी समझाए वो समझ नहीं लेते। उन्होंने कहा कभी एक बंदे ने जहन बना लिया तो उसको कितना समझाए, जी अल्लाह के हवाले, ठीक है आप उनको कह दें ट्रैवल एजेंट को कि जी इस साल आप नहीं आ सकेंगे। तो उधर फरमाते हैं कि जो वापसी की फ्लाइट का दिन था ना, उस दिन से 3 दिन बाद, यानी जो आने का दिन था उस दिन से 3 दिन बाद जो है, जो तारीख आई उस पे इन साहब का इंतकाल हो। तो एक बुरे दोस्त की बुरी बातों ने यानी कैसा महरूम किया कि अगर हज करके आते तो हज करके वापस आते और 3 दिन बाद इंतकाल होना था, तो किस हालत में अल्लाह के पास जाते। और अब जो अल्लाह के पास गए किस हालत में, तो मशाइख ने फरमाया कि इंसान खुद अपने हालात की हिफाजत भी करे, ना जिन्स की सोहबत से बचे। तो इख्तलात माल अनाम के मुख्तलिफ पहलू है, उसमें से एक पहलू ये कि जो लोग आपके दीनी जज्बे को ठंडा करते हैं तो खुद भी अकल करें, उनके साथ पूरी पूरी महफिलें ना लगाएं। और दीनी जज्बे को ठंडा करने का सबसे आम तरीका सालिकीने तरीकत के लिए तो यही है कि उसके शेख को बिल्कुल दागदार कर दिया जाए। मुमकिन है, मशाइख भी इंसान ही होते हैं, आमतौर पर सालिकीन समझते हैं मशाइख फरिश्ते ही हैं, दुनियावी जरूरियात उनको बिल्कुल कोई नहीं है, ना वो खाते होंगे ना वो सोते होंगे, बस सारा वक्त हवाओं में उड़ते होंगे। तो मशाइख भी इंसान होते हैं, मशाइख की भी दुनियावी जरूरियात, मशाइख भी बीवी बच्चों वाले होते हैं, मशाइख भी काम कारोबार करते हैं, ये सारी चीजें जो आम बंदा करता है। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में से वक्त निकाला इस फील्ड को अपने लिए चुना उन्होंने, तो जाहिर है वो इस फील्ड के आदमी है, तो हो सकता है कोई कमी कोताही रह जाए। और आज के जमाने में जब इतनी जमाने में दीनी काम हर तरफ जीरो हुआ हुआ है, तो मुमकिन है कि मशाइख में भी कोई ना कोई नुक्स हो, ऐसा नहीं है कि ना हो। और उसका तरीका ये नहीं है कि लोगों में बैठ के खूब, थोड़े ही तो लोग हैं जो दीनी काम करते हैं, उनको भी बैठ के दागदार करना है तो फिर लोगों के दीनी हाल का क्या होगा। अगर कोई चीज ऐसी नजर आए जो काबिले इस्लाह हो, शेख के अंदर भी या किसी आलिम के अंदर भी या किसी दावत देने वाले के अंदर भी, उसका तरीका ये नहीं है कि लोगों में शोर मचाने के भी बड़ी काम होगी कि मैंने ऐब ढूंढ लिया है किसी नेक बंदे में, बल्कि सबसे पहली चीज ये इंसान दुआ करे कि या अल्लाह ये दीनी काम कर रहा है मैं तो वो कर भी नहीं रहा, या अल्लाह ये गलत चीज उससे दूर कर दे। सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आप वाकईतन मुखलिस हैं। और दूसरा ये कि अगर रसाई है तो उन बुजुर्गों को भी मुतला कर दिया जाए कि ये चीज मुनासिब नहीं महसूस होती है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मगर हर बंदे को पकड़ पकड़ के बताना कि भाई ये तू किसके पीछे लग गया है, ये तो फलां चीज करते हैं, ऐसा करने वाला दीन को जोरदार नुकसान देता है और आखिर को आपको भी नुकसान। तो इख्तलात माल अनाम के चंद पहलू और उसमें से एक पहलू ये है, इंसान उन चीज से, अपने उन लोगों से, उन चीजों से अपने आप को दूर रखे जो उसके दीनी जज्बे को ठंडा करे। अल्लाह ताला इख्तलात माल अनाम की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الله نسألك علما وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. एक आखिरी बात अरे थी, लोग ये समझते हैं कि ठीक है जी, हमारा जो फिरका है ना उसके तो किसी बुजुर्ग की मैं कोई बुराई नहीं करूँ, और दूसरा फिरका जो है ना वो फ्री हैंड है मेरे पास, उनके बुजुर्गों की खूब बुराइयां कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल यकीनी तौर पे बता रहा हूँ, किसी भी फिरके के कोई भी शख्स जो दीनी काम कर रहा है, आप किसी भी के हम किसी के भी सामने किसी की भी बुराई करेंगे ना, वो सबसे पहले आपको ही बुरा समझना शुरू करेगा। वो जब कहेगा कि एक आम बंदे के लिए तो बरेलवियों का कोई बड़ा हो या देवबंदियों का कोई बड़ा हो या अहले हदीसों का बड़ा हो, आप किसी एक को भी कह दे तो वो कहेगा ये सारे ही ऐसे। इसलिए एहतियात अपनी जुबान, सालकीन तरीकत जो है वो अपनी जुबान को खामोश ही रखे ये बेहतर है। जहां कहीं गलती देखें तो उसके लिए दुआ सबसे पहले क्या, अगर आप वाकई मुखलिस हैं कि जी दीनी काम करने वाला गलत काम ना करे, तो कि जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो इसलिए किसी और फिरके के भी अगर बुजुर्ग है कोई दीनी काम करने वाला है, लोगों में बैठ के बुराइयां करना, ये दर हकीकत दीन को नुकसान पहुंचाना है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला हमें समझ नसीब करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.